आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं सुकेत अस्थाना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में स्वीकार किया कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर कुछ दिक्कतें सामने आईं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्दी ही जारी किए जाएंगे। देश भर में वीर सावरकर की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीर सावरकर को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा प्रदेश में धार्मिक आस्था और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी।
प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित पूरे राज्य में कुर्बानी के फराइज को अंजाम दिया जा रहा है। कुर्बानी का सिलसिला 30 मई को सूर्यास्त तक जारी रहेगा। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ नगर निगम सहित राज्य के सभी स्थानीय निकायों ने भी 30 मई तक अपने अपने क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था चौक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सोशल मीडिया पर लोग उनके मशहूर शेर साझा करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनका जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से राहत की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार आज रात से आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान तेज आंधी के बीच कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।